ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सबका स्वागत है। 15 जुलाई बुधवार के दिन श्री श्री राधाकांत के चरणों में आप सबका स्वागत है। बहुत सुंदर अभी समय चल रहा है, आप सबको पता होना चाहिए। हमारा जो भारतवर्ष है और हमारा जो सनातन धर्म है, ये सभी आनंदों के उत्सव से भरा हुआ है। हर समय कुछ न कुछ उत्सव चलते रहते हैं। इसलिए भारतवर्ष में वैसे देखा जाए तो मूलभूत रूप से मनोवैज्ञानिक बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में और संस्कृति में हर महीने में एक आध दो उत्सव होते रहते हैं, एक के बाद उत्सव होते रहते हैं। सो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक तनाव और बीमारी के लिए समय नहीं रहता बीच में। देयर इज़ नो टाइम इन बिटवीन। अगर हम हमारे सनातन धर्म का ठीक से पालन करेंगे, ठीक से उसमें अपने आप को रखेंगे, तो आपको कभी भी मनोवैज्ञानिक बीमारियाँ नहीं होगी। और जैसे ही सनातन धर्म से हम हट जाएंगे, धीरे धीरे भौतिकतावादी बनेंगे, हाँ पाश्चिमात्य देशों की संस्कृति को अपनाएंगे, तो मनोवैज्ञानिक बीमारी आपके साथ साथ चलेंगी। फिर फॉर एग्जांपल अभी हम अधिक मास के 29वें दिन में आप चल रहे हैं। अभी 28 दिन इतने आनंद से गुजारे हैं, इतना सुंदर भगवान की कथाएं सुनी, भगवान के धाम में गए, यात्रा किया, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन किए। फिर अभी भी मीरा रोड में राम कथा चल रही है, रामलीला। तो ये माहौल है, इसमें करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है जिस तरह हम बाकी समय में करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं या कोई कथा सुनते हैं, कोई व्रत रखते हैं, उसका आम समय से करोड़ों गुना अधिक लाभ इस अधिक मास में होता है। कार्तिक मास से भी 16 गुना लाभ अधिक मास में होता है। तो 3 साल में एक बार आता है, 32 महीने में। दूसरा, पवित्र समय अभी शुरू हो गया है, सबको पता होना चाहिए ये, और सबको बताइए जहाँ आप जाएंगे। वो ये है कि 3 दिन पहले गुरु जो ग्रह है वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु ग्रह जो होता है वो हमेशा किसी न किसी राशि में रहते हैं और एक राशि में एक महीने के लिए रहते हैं और उसको जब पार करते हैं तो दूसरी राशि प्रवेश करते हैं। इस तरह से 12 राशियां होती हैं तो एक एक महीने से जब गुजरते हैं तो एक राशि को दोबारा आने के लिए एक साल लगता है। तो जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला कहते हैं उसको। तो सिंहस्थ कुंभ मेला जो है वो बहुत पवित्र समय होता है। इसमें पवित्र नदियों में अमृत पैदा होता है जहाँ पर वो मेला लगता है। फॉर एग्जांपल अभी ये सिंहस्थ कुंभ मेला जो है ये नासिक में लगा हुआ है, नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में ये दिव्य कुंभ मेला का महोत्सव शुरू हो चुका है। 3 दिन पहले जब गुरुजी गुरु ग्रह प्रवेश कर चुके सिंह राशि में, सिंह राशि में, राशि का मतलब होता है तारका समूह, द कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारे एकत्र होते हैं और वो दूर से देखेंगे आकाश में आप दूरबीन से तो सिंह के आकार में देखेंगे, दे लुक लाइक लायन, तो सिंह राशि। फिर जब मत्स्य की तरह देखेंगे तो मत्स्य राशि। इस तरह से 12 राशियाँ होती हैं। एनी वेज, सो टेक्निकल बात यह है कि अभी 3 दिन पहले वो शुरू हो चुका है, एक साल भर वो चलेगा। उसका महात्म्य क्या है, उसमें कई मुहूर्त हैं जो आएंगे। उस दिन गोदावरी नदी में पंचवेणी संगम है, गोदावरी, वरुणा, असी, सावित्री और गायत्री, ये 5 नदियों का वहाँ संगम है। और गोदावरी ऊपर से है, बाकी सब नीचे से बहती हैं। और वो जो रामकुंड घाट है वहाँ पर ये पंचवेणी का संगम है और वहाँ पर उन तिथियों में अमृत पैदा होता है। उस समय उसको पर्व कहते हैं, पर्व, उस समय लोग स्नान करते हैं, संत लोग उसमें, और अनंत पुण्य प्राप्त करते हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है, पुण्य से भी अधिक वो है, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान का भजन प्राप्त करते हैं। और विशेष बात यह है इस पर्व की कि शिवजी, भगवान शिवजी इस समय ये पूरा वर्ष कुशावर्त नाम का एक पवित्र स्थान है वहाँ पर, जो गोदावरी जी का प्रथम प्रकट है। गोदावरी जी प्रकट होती है, लुप्त होती है, प्रकट होती है, लुप्त होती है, और बाद में फिर कुशावर्त यानी गौतम ऋषि ने एक कुश का घास का पत्ता लेकर, तृण का पत्ता लेकर उसको ऐसे एकत्र किया, कलेक्टेड इन वन प्लेस। तो कुश आवर्त, कुश से एकत्र लाया गया जो जल समूह है कुशावर्त कहते हैं, उसमें विश्व के सारे तीर्थ स्थान उपस्थित हैं। तो उसके किनारे शिवजी निवास करते हैं एक साल के लिए और भगवान का भजन करते हैं। तो शिवजी इतने महादेव, इतने विशेष देव हैं कि सारे देवताएं और सारे ऋषि जितने भी हैं संत लोग जो पुरातन काल के हैं, वो सभी 12 महीने के लिए शिवजी के साथ कुशावर्त के किनारे में निवास करते हैं। इसलिए कुशावर्त के जल में इस साल में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये नहीं कि हमारा भारत धर्म, सनातन धर्म ऐसा है कि अधिक मास खत्म हो गया अभी क्या करना है, नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ऑन ऑलरेडी। तो वो ये बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि अभी 18 तारीख को, परसों शनिवार को, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। कितना महत्वपूर्ण उत्सव है और कोई साधारण उत्सव नहीं है। इस बार आषाढ़ महीना अधिक आया था, तो आषाढ़ महीना जब अधिक आता है तो भी इस बार 19 साल के बाद में आषाढ़ महीना अधिक आया था। अगला अधिक मास जो है वो 2018 में आएगा, अश्विन अधिक मास आएगा, तो वही भाद्रपद आएगा, कभी सावन आएगा, कभी कार्तिक आएगा, लेकिन आषाढ़ जब अधिक आता है तो हमारे जगन्नाथ भगवान अपना शरीर बदली कर देते हैं, ही चेंजेस हिज बॉडी। तो इस साल 5 जून को वो महोत्सव हो चुका है कि जगन्नाथ जी का पुराना शरीर जो है, दिव्य देह उन्होंने छोड़ दिया है और नए शरीर में प्रवेश किया उन्होंने, उसको कहते हैं नवक कलेवरम, न्यू बॉडी। तो वो नव कलेवर में अभी दर्शन उनका शुरू होगा परसों से, अभी वो बंद कमरे में है, दर्शन नहीं हो रहा है उनका किसी को। फिर नेत्रोत्सव होगा 17 को और 18 तारीख को रथ यात्रा होगी। तो उस रथ यात्रा में 40 लाख लोग आने वाले हैं। नो इन्विटेशन कार्ड्स, हाँ, विश्व का बिन बुलाए, मतलब जिसको न्योता नहीं दिया गया है, हाँ, ऐसा विश्व का एक दिन का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक नंबर का लोगों का कलेक्शन है वो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु गैदर इन अ डे विदाउट इन्विटेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज रिकॉर्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, ईयर्स एंड ईयर्स। थोड़ा सेटल हो जाए तो अच्छा रहेगा जरा, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट गोइंग ऑन हियर। तो ये रथ यात्रा विशेष रथ यात्रा है, हर साल होती है, लेकिन दिस रथ यात्रा इज स्पेशल क्योंकि इसमें नव कलेवर के साथ भगवान निकलने वाले, इसलिए रोज हर साल 10 लाख लोग आते हैं, इसमें 40 लाख की उम्मीद है आने की। और जो वापसी रथ यात्रा आती है उसमें हमेशा 1-2 लाख लोग होते हैं, इसमें 10-20 लाख लोग होने का अंदाज़ा है इस समय, ऐसी भगवान की लीला है। तो 9 दिन गुंडीचा में रहेंगे, वहाँ पर ब्रजवासियों के प्रेम का आनंद लेंगे, वापस लौटेंगे, सोने के अलंकार का वेश पहनेंगे। इस तरह से उत्सव जो है 27 जुलाई तक चलेगा। और 27 जुलाई को क्या है बताइए? पंडरपुर के आषाढ़ी एकादशी है, कितना महत्वपूर्ण उत्सव है, वो भी भगवान वहाँ ही खड़े रहते हैं ऐसे कमर पे हाथ रख के, हाँ, क्योंकि 28 विठेवरी उबा वा मांगी रघुमाई दिशा दिव्य शोभा, सुंदर थे ध्यान उबे बिठे वरी कर कटावरी ठेवनिया। तो इस दिन का महत्व क्या है? 27 तारीख को जो एकादशी आएगी आषाढ़ महीने की पहली एकादशी, मतलब अधिक आषाढ़ समाप्त हो गया, निज आषाढ़ शुरू हो गया, तो जो पहली एकादशी आती है उसको शयनी एकादशी कहते हैं। उस दिन सारे देवता लोग शयन करते हैं, लेकिन इस दिन पंडरपुर के विठोबा जो हैं वो गोपाल भाव में आते हैं, गाय चराने वाले गोपाल के भाव में आते हैं, गोपाल कृष्ण। तो उस दिन उनका दर्शन पकड़ने के लिए सब लोग जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उस भाव में दर्शन करने से कहते हैं, दर्शन करने मात्र से इस जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त होता है, भगवत भक्ति या भगवत धाम प्राप्ति होती है। अभी देखिए कितने उत्सव हैं, एक ही पास पास में है, वेयर टू गो, नासिक जाए कि पंडरपुर जाए कि जगन्नाथपुरी जाए कि किधर रहें इतना वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी सारी तरफ क्या है, एक उत्सव एक साल में, साल में कोई और उत्सव ही नहीं है हमारे यहाँ पे, वैरायटी ऑफ उत्सव, हाँ, जैसे कि हम लोग जाते हैं ना मॉल, जाते हैं मॉल में तो 50 दुकान लगे रहते हैं, कपड़े की, इसकी जूते की, इसकी छतरी की, क्या क्या पता नहीं क्या क्या मिलता है, गाड़ी भी मिलती है उधर, मोटरसाइकिल मिलती है, कार भी मिलती है एक मॉल के अंदर। दैट मीन्स आपको क्या क्या खरीदना है उसमें इतनी वैरायटी मिल रही है। उसी तरह से हमारे धर्म में कैसा है, बहुत प्रकार की वैरायटी है, आपको भगवान की भक्ति में कोई ऐसा एक तरह का काम करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग मोनोटोनस वर्क, इज लॉट ऑफ वैरायटी इज देयर। पंडरपुर विठोबा खड़े हैं कमर पे हाथ रख के, उधर लकड़ी के दारू ब्रह्म के विग्रह बने हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं, हाँ, श्रीरंगम में सो रहे हैं, बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, द्वारका में राजपाट चला रहे हैं, हर प्रकार की वैरायटी आपके लिए, हाँ, कोई भी बोर होने की जरूरत नहीं है, एवरी काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ लॉर्ड इज अवेलेबल, द सेम सुप्रीम लॉर्ड इज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो ये हमारा भाग्य है, परम भाग्य, उस भाग्य की हमको पहचानना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में होकर हम इस भाग्य को नहीं जानते हैं, तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ कैसे जाएगा? दुखों में डूबते हुए जाएगा, सुख में नहीं जाएगा। भगवान को भूलकर कभी भी जीव सुखी नहीं हो सकता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे कृष्ण को भूलकर हम जीने का प्रयास करते हैं, माया हमको झपट के पकड़ती है और केवल दुख देती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दूसरों के द्वारा मिली हुई तकलीफ, जैसे कीटक है, कुत्ता बिल्ली, हाँ, शेर, जो भी कुछ है, इंसान, पड़ोसी, पति पत्नी, नेबर्स, या तो मन से ही तकलीफ होती है, या तो प्रकृति के द्वारा, अभी गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, हर प्रकार के तकलीफ में माया जकड़ के रखती है और कष्ट देती रहती है। जैसे ही जीव भगवान के शरण में आता है, राधा राधा कांत जी के शरण में आता है, तुरंत सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख तो रहते हैं आजूबाजू में, आपको परिणाम नहीं करेंगे आपके ऊपर। जब तक दुनिया है तब तक दुख रहेंगे, लेकिन जो भगवान के चरणों में है उसको दुख नहीं छूता है। वर्षा तो हो रही है, लेकिन छत के नीचे रहेंगे तो वर्षा नहीं छुएगी आपको, वर्षा बाहर होती रहेगी, तो वर्षा बंद नहीं होगी, आपको छत के नीचे आना है। तो वो छत जो है वो इनके चरणों का है, उस चरणों के छत के नीचे आप आसरा लेंगे तो सबसे पहले आप क्लेशाग्नि दुख से मुक्त हो जाएंगे, दूसरे निर्भय हो जाएंगे, किसी से आप डरेंगे नहीं। हम लोग डरे रहते हमेशा, क्या कुछ चोरी हो जाएगी, क्या कुछ हमारा शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा क्या मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो कैसे दिखूंगा, आई डोंट नो, बीमार हो जाऊंगा, उरों कहीं जाऊंगा परदेश में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत प्रकार का भय रहता है, और आखिरी भर मृत्यु का रहता है। लेकिन सारे भय से जीव मुक्त हो जाता है जैसे ही वो इनके चरणों की आश्रय लेता है। एको न बुझीनु प्रभु तुम्हारा चरणे अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खान। आपके चरणों का आश्रय लेके अशोक यानी शोक से मुक्त हो जाते हैं, अभय यानी भय से मुक्त हो जाते हैं, और आनंद के भरे हुए कान से कान में प्रवेश करते हैं। यू एंटर द माइंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो ऐसे हमारे आनंद को दुगने चौगुने हजार गुने अनंत गुना प्राप्त कराने के लिए श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ये जो उनका विशेष अवतार है, प्रभु राम के रूप में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हम सबको सिखाने के लिए। मर्यादा क्या होती है, एक पति की मर्यादा क्या होती है, एक पत्नी की मर्यादा क्या होती है, एक राजा की मर्यादा क्या होती है, एक भाई की, बहन की, नागरिक की, एक मनुष्य की, हर एक मर्यादा होती है। इट्स अ गाइडलाइन इज देयर हाउ टू बिहेव। तो वो सब मर्यादाओं को सिखाने के लिए प्रभु रामचंद्र आए। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में श्री कृष्ण आए और अपने सारे ऐश्वर्यों का लीला प्रकट किया उन्होंने, सौंदर्य का, बल का, विरक्ति का, हर प्रकार के ऐश्वर्य का लीला प्रकट किया उन्होंने एक पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। सारी शक्तियां प्रकट की, सारा वैभव प्रकट किया, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश को लीला। और उसके बाद वाला जो अवतार है उसमें उन्होंने ऐश्वर्य अधिक नहीं दिखाया लेकिन उदारता दिखाई, औदार्य लीला, म्यूनिफिसेंस यानी कि उनका जो औदार्य है, उदारता है हृदय की, वो अधिकता से प्रधान प्रकट किया उन्होंने। ऐसा कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व में दो अंग होते हैं, एक होता है माधुर्य अंग जो प्रेम की मधुरता जो है उसको प्रकट होती है, और दूसरा अंग है उनकी कंपैशन यानी कि करुणा। तो जब करुणा प्रधान होती है तो वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, जब माधुर्य प्रधान होता है तो वो श्री कृष्ण भगवान बन जाते हैं। और गौलोक धाम के अंदर भी ये दो हिस्से हैं, जब औदार्य हिस्सा है वो गौर धाम है और जो माधुर्य हिस्सा है वो गौलोक धाम है। दोनों है एक ही, लेकिन जब भाव बदलता है तो उसके कार्य बदलते हैं, उसके परिणाम बदलते हैं, लाभार्थी बदल जाते हैं, बेनिफिशरीज चेंज। तो ये गौरांग महाप्रभु का अवतार जो है वो ऐसा विशेष अवतार है कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने अपने अलग अलग अवतार लेते हैं ना, विष्णु के रूप में, फिर वो मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा, वामन, बहुत सारे अवतार लेते हैं, तो हर एक अवतार के अपने अपने एक भक्तों का समूह है, ग्रुप ऑफ डिवोटीज ओनली ऑफ दैट अवतार। तो वो उस समय आते हैं जब नरसिंह भगवान का अवतार होता है तो प्रहलाद जैसे भक्त लोग आ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए, उनका प्रसन्नता के लिए। और जब वामन देव आते हैं तो उनके अवतार आते हैं, यहाँ तक कि जब मत्स्य अवतार समुद्र में आता है ना तो समुद्र कन्याएं समुद्र में होती है जो उनकी पूजन भजन पूजन करती हैं। वराह अवतार में भी, कुर्म अवतार में भी उनके भक्त होते हैं। से कितने भक्तों का वर्णन दिया गया है कई महात्म्य पुराणों में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार की ऐसी विशेषता है कि जितने सारे अवतार हुए हैं उन सारे अवतारों के सारे भक्त जो हैं वो इन अवतार में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौरांग महाप्रभु के अवतार में प्रहलाद जी वासुदेव दत्त बनकर आए, ऐसा है ये। अनेक प्रकार के लोग आए, कुसुमासव नाम के गोप जो है वो श्रीधर कोलवे से बनकर आए, नारद मुनि जो है वो श्रीवास ठाकुर बनकर आए, महाविष्णु जो है वो अद्वैत आचार्य बनकर आए। ऐसे अलग अलग भगवान के अलग अलग अवतारों के जितने भी लोग हैं, गोपियां जो हैं वो भी अलग अलग रूप धारण करके आई, नंद महाराज आए, यशोदा आई, हर प्रकार के हर अवतार के जितने भक्त थे। बड़ा वर्णन है उसका, एक ग्रंथ है उसका नाम है गौर गणोदेश दीपिका, उसमें बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतारों के जो भागीदार थे वो कौन कौन थे, कौन से अवतार में क्या क्या उनका रूप था, उसका पूरा वर्णन दिया गया है। तो ये गौरांग महाप्रभु जो है, इनकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ही करुणामय हैं, वो अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के सेवा में अपराध बहुत भयंकर होता है, सावधानी से सेवा करनी होती है उनकी। लेकिन गौर निताई यानी कि कृष्ण बलराम, जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं तो अपनी सेवा में अपराध नहीं लेते हो, यू कैन मेक मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। जैसे कि माता और पिता कभी बच्चे का अपराध लेते हैं क्या, बच्चे लात मारते हैं, मुंह पे उल्टी कर देते हैं, कपड़ा ख़राब कर देते हैं माँ का और खुद का, लेकिन मदर नेवर गेट्स एंग्री और लव इंक्रीजेस मोर एंड मोर। उस तरह से गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है, वो रूप में वो शस्त्र नहीं उठाते। पिछले अवतार में जब आए थे तभी चक्र, शारंग पाणी धनुष, कौमुदकी गदा, शंख, और बलराम जी हल मुसल गदा उठाते हैं, कभी तिनका उठाते हैं लगाते गले पे तो मृत्यु हो जाती है, कभी हल उठाते हैं और पृथ्वी से हस्तिनापुर को अलग कर देते हैं। कैन यू इमेजिन, जो बच्चे होते हैं ना खेल खेल में वो मैप खेलते हैं इंडिया, फिर कभी महाराष्ट्र आंध्र ऐसा लगाते हैं, फिर उनको सिखाते हैं यहाँ महाराष्ट्र लगाना होता है, फिर यहाँ से आंध्र लगाना होता है, तो कितनी आसानी से बच्चा उठाता है महाराष्ट्र को और रखता है यहाँ पे है ना, सो इजीली। वैसे हमारे बलराम जी ने, बलराम जी के द्वापर युग के अवतार में हल के नोक पे हस्तिनापुर को पृथ्वी से उखाड़ दिया था और हवा की गति से उड़ाकर उसको गंगा में फेंकने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनका दुर्योधन ने अपमान किया था। सब लोग हाथ जोड़ के आए, भाग भाग के, कहाँ पर वो नोक पर उठाए हुए हस्तिनापुर के कोने में आए वो तब उन्होंने फिर नीचे रखा उसको, फिर सब लोग ने माफ़ी मांगी उनसे। ऐसे बलराम जी यहाँ पर हाथ जोड़ के आते हैं, हमारे जैसे गृहस्थों के दरवाजे पे आते ठोकते हैं, प्लीज़ ओपन द डोर, भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा, आप कुछ भी कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। फिर लोग दरवाज़ा बंद करते हैं मुंह पे उनके, वाई टू कम टू डिस्टर्ब, फिर वापस नॉक करते हैं, इस बार दरवाज़ा खोलते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, किधर गए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ज़मीन पे, बोले 50 बार दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद करो लेकिन भगवान का नाम ज़रूर लो, मेरा अपमान से मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं 50 बार दरवाज़ा ठोकूंगा, आप 50 बार उसको बंद कर सकते हो मेरे मुँह पे, लेकिन भगवान का नाम लो, ये आपके जीवन का सार है। पिछले जन्म में जरा सा अपमान होने के बाद में वो तुरंत वध कर देते थे, इस जन्म में क्या करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। गौरांग महाप्रभु भी वही करते हैं, अनंत करुणा है भगवान के मन में। इस अवतार में कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, केवल कमंडल और दंडा है। पहले में धनुष बाण था राम के अवतार में, चक्र था कृष्ण के अवतार में, इस अवतार में क्या है, कमंडलू और दंड। नदिया नगरे दंड कमंडलू कर, ऐसा है उनका। तो ये जो गौरांग महाप्रभु हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये स्वयं कृष्ण हैं लेकिन राधा रानी का जो भक्ति भाव और प्रेम है उसको धारण करके आए हैं। हृदय जो है राधा रानी के भाव से भरा हुआ है, शरीर कृष्ण का है। तो राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, दोनों मिलकर एक होकर राधा कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु बने हैं। तो ये कैसे बने, क्यों बनने का विचार आया, कहाँ से शुरुआत हुई कहानी, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इसकी, वो मैं आज आपको कुछ प्रयास करूँगा बताने का। माता जी ने कहा था कि कुछ विरह की कहानी बताओ, विरह की, तो शुरू की कहानी थोड़ी विरह की कहानी है। वैसा हुआ कि भगवान ने बंसी भट्ट पे शरद ऋतु में रास रचाया, फिर चैत्र में वासंती रात रचाया, स्प्रिंग टाइम रास लीला, वो चंद्र सरोवर में मनाते हैं, वो उधर गोवर्धन के पास में गांव है, प्रविष्ट वन, वहाँ पर वो लीला होती है चंद्र सरोवर के किनारे। शरद ऋतु में वो बंसीवट पे होती है जमुना किनारे। तो ऐसे ही जमुना किनारे भगवान जब रास कर रहे थे तो भगवान ने अपने आप को अनंत गोपियों के साथ में अनंत रूपों में विभाजित कर दिया, मतलब एक गोपी के साथ एक कृष्ण है। और वो इतने मशगूल हैं नृत्य करने में, इतने मग्न हैं कि दूसरे को पता नहीं है कि मेरे साथ भी है। आपको लग रहा है कि आप ही के साथ में, आप उनमें इतने मग्न हैं कि बाजू में जो गोपी है उसके साथ में भी वो है, ये हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। इतना आनंद मिल रहा है, इतना क्या कहते हैं उसको, मग्नता प्राप्त है। तो सभी गोपियाँ ऐसे एक एक कृष्ण के साथ में नृत्य कर रही थी। अब भगवान उनके आत्मा को जो परम आनंद प्राप्त हो सकता है, परम आनंद, अल्टीमेट वो आनंद उनको प्राप्त हो रहा था, तो क्यों वो यहाँ वहाँ देखे किसको क्या मिल रहा है, अपने आप में मग्न थी। लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, देखो इतने सारे करोड़ों गोपियाँ हैं उनको छोड़कर कैसे मेरे साथ नाच कर रहे हैं, मतलब विशेष, मैं कुछ विशेष हूँ, मुझ में ऐसी कुछ बात होगी जो सबको छोड़ के मेरे साथ नाच कर रहे हैं। ऐसा सबको लगने लगा, राधा रानी को भी लगने लगा कि आई एम वेरी स्पेशल। तो जैसे ही ये थोड़ा सा अहंकार आ गया मन में नाच करते करते करते, तो भगवान एकदम अंतर्धान हो गए। जितने करोड़ों करोड़ों रूप थे वो सब गायब हो गए। और तुरंत वो दूसरे गोपी को बोलने लगे, सब लोग आपको पता है वो मेरे साथ नृत्य कर रहे थे, सबको छोड़कर मेरे साथ में थे। तो दूसरे ने कहा मेरे साथ भी थे, तीसरे ने कहा मेरे साथ भी थे, सब ने कहा हमारे साथ भी थे। तो सबको ध्यान में आया कि वो सबके साथ थे, हमने तो गलती किया, झूठ मूठ का अहंकार प्रकट किया, देखो हमने उनको खो दिया, चले गए वो। तो सब गोपियाँ व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि वो पेड़ों को, वृक्षों को, वेलियों को, फूलों को, पत्तों को, शाखाओं को, ग्राम देवताओं को, वन देवताओं को पुकारने लगे, कहीं आपने कृष्ण को देखा है, कहीं आपने कृष्ण को देखा है। हिरणों को पूछ रही है, सभी वन के जितने जीव हैं उनको सबको पूछ रही है कि हमारे कन्हैया को आपने देखा है, और कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो भी उदास हैं कि कन्हैया तो छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने विरह का गीत गाना शुरू किया, वो भ्रमर गीत गाया। एक भ्रमर आया तो राधा रानी ने उस भ्रमर को देखा और सोचा कि कृष्ण आए हैं, तो भ्रमर को देख के कृष्ण से बातें शुरू की उन्होंने, उसको भागवत में भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं, बहुत सुंदर अध्याय है वो। फिर वेणु गीत, उन्होंने भगवान की वेणु की याद की और उस वेणु की याद में उन्होंने कुछ श्लोक कहे और विरह व्यक्त किया। तो भ्रमर गीत, गोपी गीत, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़तम सर्व कल्म शापहम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़तम कल्म शापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि भृण्णन्ति ते भूरि दाजनः। गोपियों का जो भाव है भगवान के प्रति वो इसमें प्रकट होता है कि कैसे गोपियां भगवान की श्रेष्ठ भक्त थी। लेकिन भगवान ये दिखाते कि आप कितने भी श्रेष्ठ भक्त होंगे, अगर अहंकार आपके मन में आता है तो मैं तुरंत दूर चला जाता हूँ। अहंकार एक ऐसी बात है जो भगवान से हमको अलग कर देती है, और भगवान बड़े दूर चले जाते हैं, बड़े पास में है वो हमारे, हाँ 6 इंच की जगह के हृदय के अंदर है वो, लेकिन जैसे ही अहंकार आता है मीलों दूर चले जाते हैं। तो गोपियाँ भी उनको खो बैठी हैं, रो रही हैं, वो सब वनों भटक रही, यहाँ से इस वन में, उस वन में, इस गली में, उस गली से, इस जंगल से, वहाँ वनों में भटक रही हैं, पुकार रही हैं भगवान को, कहाँ हो आप, उनका गुणगान कर रही हैं, उनकी पुरानी लीलाओं को याद कर रही हैं कि कैसे हम जमुना किनारे मिले थे, कैसे बंसी सुनी थी, कैसे रात को भाग के आए थे, कैसे भगवान को गौचारण करते हुए देखा था, कैसे बैठ के हमने उनके गाने सुने थे जमुना किनारे में, हम लोग स्नान कर रहे थे, सबकी याद कर रहे हैं वो, और ढूंढ भी रहे हैं उनको, रो भी रहे हैं याद में, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी मिलन की, पुराने मिलन की याद करके हंस रहे हैं, कभी अभी नहीं है इसलिए रो रहे हैं, ऐसे अलग अलग विचित्र भाव उनके, कभी भंवरे से बात कर रहे हैं, कभी पेड़ों से पुकार रहे हैं, कभी पंछियों से बात कर रहे हैं, कहाँ है कन्हैया। ऐसे करते 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 राधा रानी के साथ में वो एक पेड़ के नीचे आए, जमुना किनारे। वो इमली का पेड़ था, उसका नाम है इमली तला। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं आंख बंद करके, मोर पंख लगा हुआ है, हाँ पीताम्बर पहना हुआ है, वनमाला पहनी हुई है, जैसे कृष्ण अलंकार पहनते हैं वो सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन श्याम वर्ण नहीं है, गौर वर्ण है, गोरे रंग के हैं, काले रंग के नहीं है, हमारे कन्हैया तो श्याम वर्ण के हैं। बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, अरे ऐसा व्यक्ति तो हमने वृंदावन में कभी देखा नहीं, सब कुछ कृष्ण जैसा है लेकिन रंग गोरा है। तो बहुत देर तक चर्चा होती रही, क्या है ये, क्या रहस्य क्या है। फिर राधा रानी ने क्या किया, थोड़ा धाड़स किया, चलो मैं आगे जाके देखती हूँ। आगे जाकर वो व्यक्ति को छुआ उन्होंने, जैसे ही स्पर्श किया उनका गौर वर्ण जो है वो श्याम वर्ण में धीरे धीरे रूपांतरित हो गया। ग्रेजुअली द फेयर कम्प्लेक्शन चेंज इनटू डार्क कम्प्लेक्शन, और उस व्यक्ति ने आंखें खोली और वो कृष्ण ही थे। तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये क्या रहस्य है, ये दर्शन कभी हुआ नहीं पहले। तो पूछती राधा रानी, क्या बात है, ये इसका राज क्या है। तो वो कहते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में जिसका अर्थ ये है कि कालिंदी यानी जमुना के तट पर कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं वृक्षों के नीचे, और राधा रानी को याद कर रहे हैं, उसके प्रेम को याद कर रहे हैं, उसकी भक्ति को याद कर रहे हैं, उसके रिश्ते को याद कर रहे हैं, उनके साथ किए हुए आनंद को याद कर रहे हैं, खास करके उनके भाव का अनुभव कर रहे हैं कि वो किस भाव से मुझे प्रेम करती है या मेरे साथ रिश्ता बनाती है। तो वो कहते हैं कि जब वो वहाँ बैठते जमुना किनारे तो केवल राधे राधे पुकारते, बोलिए आप राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, यही कृष्ण का मंत्र है। हाँ साधना हम सब लोग करते हैं, हमारे पास भी मंत्र है, लेकिन श्री कृष्ण भी साधना करते हैं और वो मंत्र है राधे राधे। इनके लिए और कुछ भी जीवन में नहीं है राधा रानी के अलावा, राधा बिना कृष्ण शब्द आधा। तो इस तरह से वो याद करते हैं राधा रानी के भजन को और प्रेम को, तो अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। जब राधा रानी और गोपियाँ उनकी सेवा करती है तो उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो देखते हैं कि अरे जब ये मेरी सेवा करते हैं तो मुझे ये अनुभव होता है कि मुझसे अधिक आनंद का अनुभव ये लोग कर रहे हैं, और वो जो मेरी सेवा में उनको आनंद मिलता है वो मुझे पता नहीं है, जो आनंद मेरी सेवा करके ये लोग हृदय में प्राप्त करते हैं। तो उस आनंद का कुछ ग्लिम्स यानी कि कुछ झलक जो है ना, थोड़ी झांकी उन्होंने इस पोजीशन में अनुभव की जब वो कृष्ण से राधा रानी से अलग होकर बैठे। तो वो कहते हैं कि आपसे दूर होकर मैं भी दुखी था बहुत, और इस पेड़ के नीचे आके बैठकर आपके मेरे विषय में जो प्रेम है उसके बारे में मैंने चिंतन किया, और वो चिंतन करने से इतना मुझे आनंद प्राप्त हुआ, इतना आनंद प्राप्त हुआ कि मैं समझ गया कि अभी ये केवल शुरुआत की झलक है, मैं एक अवतार लूँगा पूरा जिसमें मैं आऊँगा और आपका हृदय का भाव जो है वो ग्रहण करके अवतार लूँगा, और एक पूरा अवतार समय काल जो है अवतार समय वो पूरा समय मैं आपको जो प्रेम की अनुभूति होती है मुझ पर प्रेम करने से उसका अनुभव करूँगा, और ऐसी क्या बात है मुझ में जिस पे आप देखकर आकर्षित होते हो उसका भी अनुभव करूँगा। व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन यू हैव फॉर मी, आई विल एक्सपीरियंस दैट। ऐसे राधा रानी को भगवान ने वादा किया कि मैं एक अवतार लूँगा पूरा स्पेशल अवतार। कभी होता है वो सत्य त्रेता द्वापर और कली, ये चार जब युग होते हैं ना तो उसको एक दिव्य युग कहते हैं या एक कल्प कहते हैं। इसको 43 लाख 20,000 ईयर्स लगते हैं एक चक्र को पूरा होने के लिए। ऐसे हजार चक्र होते हैं, तो हजारवें चक्र में जब कलयुग आता है तो ये आते हैं गौरांग महाप्रभु, और वो हजारवें चक्र में जो द्वापर आता है तो श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, हर कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इतना दुर्लभ अवतार है ये। 43,20,000 ईयर्स के 999 चक्र पूरे होने के बाद में जब हजारवें चक्र में सत्य समाप्त होता है, त्रेतायुग समाप्त होता है, द्वापर समाप्त होने को आता है, तब श्री कृष्ण भगवान आते हैं, और वो समाप्त होने के बाद जो कली शुरू होता है उसके 500 वर्ष के बाद में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और आप सब लोग, हम सब इतने भाग्यवान हैं कि इस कलयुग के केवल 524 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। तो हम लोग कैसे कहते हैं, जस्ट 525 ईयर्स बैक, जस्ट 5000 ईयर्स बैक श्री कृष्ण वॉज देयर। क्यों ऐसा बोलते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास्ड, करोड़ों लाख करोड़ों करोड़ों साल बीत चुके हैं, इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास्ड, उसमें अभी पिछले ही युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इस युग में केवल 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। इतने हम लोग भाग्यशाली लोग हैं। तो राजा रानी ने कहा कि जब मेरा भाव लेकर आप आओगे ना, तो आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, आप कहीं भी गिर जाओगे, बेहोश होकर, बदहोश होकर, शाखा से पानी में गिरोगे, चलते हुए जमीन पर गिर जाओगे, पत्थर कंकड़ कांटे से अपने आप को जख्मी करोगे। मुझे बड़ी सोच कर भी चिंता हो रही है, इसलिए मैं आपको वादा करती हूँ, जब आप इस भाव को लेकर आओगे ना, तो श्याम वर्ण में नहीं आएंगे, मेरे वर्ण को लेकर आएंगे, गौर वर्ण को लेकर आएंगे, मेरी कांति से मैं आपको ढक दूंगी। इसलिए अगर स्पेशल कवर आपने देखा है पैसिफिक ओशन में, सैन डिएगो में या लॉस एंजलिस में जब होता है ओशन, उसमें लोग सर्फिंग करते हैं पानी में, वो एक काले रंग का स्किन टाइट ड्रेस पहनते हैं ताकि उनको मछली ना काटे, तो वो एकदम अपने स्किन के जैसा ही होता है, इट्स लाइक योर स्किन एंड दैट इज ऑल फिटिंग कम्प्लीटली। तो वैसी कांति मैं आपको कवर करूंगी पूरी तरह से, ताकि आप जहां पर भी गिरोगे अपने आप को जख्मी नहीं पाओगे। मैं ये विचार भी नहीं कर सकती हूँ कि आपके शरीर से जख्म हो रहे हैं और आप गिर रहे हो, पानी में गिर रहे हो, शाखा से जमीन पर गिर रहे हो, कांटों में गिर रहे हो, पत्थर पर गिर रहे हो, मुझे सहन नहीं हो रहा है विचार भी। इसलिए मैं, जब आप इस रूप में आओगे तो मैं मेरी गौर कांति स्वर्ण कांति से आपको ढक दूंगी। इसलिए हमारे गौरांग महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, तो ये उनका रहस्य है। और ये तो उन्होंने अपने रासलीला के समय पे दिखाया दर्शन, उसी के आसपास थोड़े दिन पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुराए। तब भगवान बछड़ों को चराते थे, छोटे थे ना वो, बड़ी गायों का उनको जिम्मेदारी नहीं दिया गया था उनको। तो उसके पहले भगवान ने अगासुर को मारा, वो जो भयंकर अजगर था, सारे देवताओं को भयभीत करके रखा था, सब देवता भयभीत थे उससे, उसको भगवान ने मारा बालक रूप में, छोटे से रूप में। तो ये बात ब्रह्मा लोक तक पहुंची, ब्रह्मा को खबर मिली कि एक बालक ने वो अगासुर को मारा जिसको सब देवताओं को भयभीत करके रखा था, और वो कहने लगे कि ये जो बालक है वो भगवान है। तो ब्रह्मा जी को यकीन नहीं हुआ, इतने भयंकर राक्षस को 7 साल के बालक ने कैसे मारा, मैं जाके देखूंगा कौन बालक है वो, देखूंगा कि मेरे भगवान अगर वो हैं तो दर्शन भी करूंगा कि कैसा अद्भुत अवतार लिया उन्होंने। तो वो नीचे आते हैं, देखते हैं तो ये जमुना किनारे बैठकर सब जूठन खा रहे हैं, सब डब्बा खोल के अपना अपना टिफिन खोल के, अरे अरे मेरे डब्बे में कितना अच्छा, देखो तो खाओ, ये खा के देखते, अरे ये बहुत मीठा, ये खाओ, फिर वो अपने डब्बे से उनको खिला रहे हैं, ऐसे मुंह से निकाल के सब लोगों को खिला रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आकाश में हंस पे बैठ कर देख रहे हैं, अरे ये क्या है, हमारे यहाँ तो ओम सहस्र शीर्षा सहस्रपाद से भयंकर श्लोक बोलते हैं बहुत सारे, घंटी बजती है और भोग लगता है कितने देर से, बाद में फिर प्रसाद के रूप में हम लोग खाते हैं उसको, भगवान को थोड़ी हम लोग ऐसा खा के खिलाते हैं, ये तो सब बोल रहे हैं भगवान है क्या, ये सब बालक उनको अपने मुँह से निकाल के खिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका मुँह से निकाल के खा रहे थे तो प्रसाद मिल रहा है, अपने मुंह से खा खा के उसको खिला रहे हैं, अरे कन्हैया इसको खा के देख, ये मेरी मैया ने बनाया है बहुत स्पेशल, तो वो तुरंत छीन के खा रहे हैं, तो अच्छा निकला तो उसके मुंह से खाने के पहले छीन के खुद खा रहे हैं, ऐसा अद्भुत लीला हो रही है। और ये देख रहे हैं ब्रह्मा जी, अरे ये तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि तो ऐसा तो भगवान काम नहीं करता। तो उसने कहा कि मैं ज़रा मजा करता हूँ इनकी, और क्या क्या बछड़े चुरा लिए, तो अचानक बछड़ों की याद आई खाते खाते, तो अरे बोले बछड़े कहाँ गए, भगवान ने कहा आप बैठो अपने आनंद को डिस्टर्ब मत करो, मैं जाके देखता हूँ आप खाते रहो। तो वो जब गए ऐसे हाथ में थोड़ा सा दही और चावल लेके गए, ऐसे ढूंढते ढूंढते बछड़े कहाँ हैं, तो एक भी बछड़ा नहीं मिला, सब बछड़े के चरण कुछ समय तक थे, उसके आगे चरण है ही नहीं उनके चिन्ह, तो समझ गए कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। लौट के आए तो एक भी बच्चा वहाँ पर नहीं, सब बच्चे गायब, करोड़ों बच्चे थे सब गायब, बछड़े भी गायब बच्चे भी गायब। भगवान का कोई बात नहीं, सारे बछड़े के रूप में अपने आप को विस्तारित किया, सारे ग्वाल बाल खुद बने, हाँ एकदम डिटेल में, कोई पेंसिल लगाता है कान में, कोई यहाँ पर चंपा का फूल लगाता है, सारा डिटेल के साथ में सब ग्वाल बाल बने, अपने अपने घर चले गए, 1 साल तक उसी रूप में रहे, सोचो आप, क्योंकि सारे सारे ब्रजवासी इच्छा करते थे, अपने बालक से भी अधिक कृष्ण पर प्रेम करते थे। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी को, ये कैसे मुमकिन है, अपने बालक से दूसरे बालक से कैसे ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं? लेकिन ये हकीकत थी कि अपने बालकों से भी कई हजारों गुना ज़्यादा प्रेम वो कृष्ण से करते थे, और ये इच्छा करते थे कि काश मेरा कृष्ण बालक बन जाए। हर गाय सोचती थी कि काश कृष्ण मेरा बछड़ा बन जाए। तो इस रूप में सब बछड़े कृष्ण थे, सब बालक कृष्ण थे, तो सब गोपियों को कृष्ण बालक बनने का आनंद भगवान ने दिया, सब गायों को बछड़ा बनकर दूध पीने का आनंद सब गायों को दिया, एक साल तक आनंद दिया। उस बीच में सब ग्वाल बाल बोले अपने लड़के बड़े हो गए, उनकी शादी होनी चाहिए, तो सब गोपियों की शादी ग्वाल बालों के साथ हो गई, उनकी भी इच्छा थी कृष्ण हमारे पति बने। तो एक साल तक भगवान ने सभी लोगों की सब प्रकार की इच्छा पूर्ण कर दी। देखो क्या है, ब्रह्मा ने सोचा कि थोड़ा गड़बड़ करके देखता हूँ क्या होता है, भगवान ने उसका भी लाभ लिया और सबकी इच्छा पूरी कर दी। भगवान इतने अद्भुत हैं कि चाहे गलत हो या सही हो उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं और अनेक लीलाएँ एक साथ में कर लेते हैं। तो एक साल यहाँ का हुआ तो वहाँ का एक ही क्षण हो गया ब्रह्मा जी का, एक क्षण में वो लौट के आए देखने के लिए मजा क्या हो रहा है। तो क्या देखते हैं, अरे वही सब बालक बैठे हुए हैं, वही जूठन खा रहे हैं, वही बछड़े चर रहे हैं, ये क्या लीला है। तुरंत ब्रह्मा लोक में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने उनको कैद करके रखा है, हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके, निद्रा में रखा हुआ है। सब लोग उधर भी है इधर भी है, तो एकदम चकरा जाते पूरे। तो उनकी चकरा जाने की जो है ना उसको कहते हैं विमोहन, यानी कि सम्मोहित हो जाते हैं वो, इज दे बिकम हिप्नोटाइज कम्प्लीटली, एकदम पागल जैसे हो जाता है ब्रह्मा। उनके भ्रम में भर डालने के लिए हर एक ग्वाल बाल को और हर एक बछड़े को क्या करते हैं, विष्णु बना देते हैं। चार भुजा वाले विष्णु प्रकट होते हैं, शंख चक्र पद्मधारी, करोड़ों विष्णु खड़े हैं उधर। और उनको भ्रमित करने के लिए क्या करते हैं, हर एक विष्णु के सामने 33 कोटि देवताओं का एक सेट है जो उसकी पूजा कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप क्या सीन होगा, वो इतने सारे विष्णु तो वही एक भ्रमिष्ट करने के लिए काफी है। और हर एक विष्णु के साथ में 33 करोड़ का एक देवता, उसमें विष्णु भी है, उसमें ब्रह्मा भी है, वो स्वयं को भी देख रहे हैं उसके अंदर कि इतने सारे ब्रह्मा जो है वो सारे विष्णुओं की पूजा कर रहे हैं, और बीच में श्री कृष्ण भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, हरि बोल। और उसमें अधिक भ्रम करने के लिए क्या करते हैं, अचानक सारे विष्णु गायब हो जाते हैं और वही बालक है वो हाथ में दही लेकर ढूंढ रहे हैं मेरे बछड़े कहाँ गए। तो फिर इसको समझ में आते हैं कि मेरे हाईटेक सॉफ्टवेयर वाले चार दिमाग जो थे वो थोड़ा बेकार गए, पूरे कंप्लीटली करप्ट हो गए। ये समझ में आ रहा है आपको, चार दिमाग है उनको और वो चार दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट है पूरी दुनिया के बनाते हैं, वो पूरे शरीर को हमारे बनाते हैं, जितने जीव है उनके बनाते हैं, हर एक अलग है शरीर, ट्विंस भी सेम नहीं रहते हैं, इतना उनका पावर है दिमाग में उनके। वो चार दिमाग कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आते उनको क्या चल रहा है। फिर पता चलता है कि ये 7 साल का बालक बालक नहीं है, ये मेरे भगवान है, सुना था ना पहले वो सही था, मैंने बेकार में टेस्ट लिया इनका, कोई भगवान का टेस्ट करता है क्या, मैंने तो वो भी कर लिया, उनको अपने साथियों से बिछड़ा दिया, मैंने चुरा लिया उनको, लीला में भंग डाल दिया, कितना बड़ा अपराध किया। तो होश में आ गए, वो चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, प्रार्थना करने लगे, माफ़ी मांगने लगे, क्या क्या गौरव करने लगे। तो भगवान खड़े होकर सुन रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, अरे जल्दी प्रार्थना समाप्त कर, मुझे खेलने जाना है। एक तो पहले गलती करते हैं, बाद में प्रार्थना करते हैं, मुझे खड़ा होकर सुनना पड़ता है, अरे ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं गोटी खेलने के लिए, जल्दी ख़त्म करो। ये उनका भाव उन्होंने व्यक्त किया एक ग्रंथ में कि मुझे इन देवताओं की प्रार्थना में रुचि रहती नहीं है, मुझे मेरे ग्वाल बाल के संग खेलने में रुचि रहती है। फिर भी प्रार्थना सुनते हैं, ब्रह्मा जी को माफ़ कर देते हैं, दोबारा नहीं करना, ब्रह्मा जी चले जाते हैं। लेकिन उनका मन जो है ना बहुत दुखी रहता है कि मैंने क्या फ़ायदा ब्रह्मा बन के, इतना बड़ा पोजीशन प्राप्त हुआ, इतना अथॉरिटी मिला, लेकिन क्या किया, भगवान की लीला में भंग कर दिया, बछड़ों को चुरा, उनके प्रिय बछड़ों को और बालकों को चुरा किए, उनको विरह में डाल दिया, ऐसा ब्रह्मा हूँ मैं, क्या फ़ायदा ब्रह्मा बन के। ब्रह्मा कोई आदमी का नाम नहीं है, ब्रह्मा पोस्ट का नाम है, डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो पोस्ट का नाम है। वैसे ब्रह्मा एक पोस्ट है, उसमें कोई जीव जाके ब्रह्मा बन जाता है तो बड़ा पश्चाताप करते हैं, अपने हंस में उड़ते हैं वहाँ से माफ़ी प्राप्त करने के बाद, फिर उतर जाते हैं और एक जगह बैठ कर रोते हैं, कितने आँखों से, 8 आँखें से, यू आर राइट। और एक बड़ा गहरा विस्तार वाला कुंड बन जाता है अश्रुओं से, पश्चाताप के अश्रु। बहुत सुंदर जगह है वृंदावन में, बंसीवट के किनारे पे है ब्रह्मकुंड। फिर वहाँ से उड़ते हंस में कुछ देर उड़ते हैं, फिर दुख होता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, मुझे तो पूरी अभी माफ़ी मांगनी, पूरी माफ़ी मांगनी है। फिर दोबारा उतरते हैं, अभी सुनो अभी कथा हमारी बराबर पॉइंट में आ गई है। एक जगह उतरते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं कि मुझे अगले जन्म में ब्रह्मा नहीं बनाना, प्लीज़ ब्रह्मा बन के मैंने इतना बड़ा गड़बड़ किया, मुझे अगले जन्म में किसी भी स्थिति में ब्रह्मा नहीं बनाना, ऐसा बनाना कि मैं तुच्छ बन जाऊँ, कोई इनसिग्निफिकेंट अछूत बन जाऊँ और आपकी लीला में भंग न डालूँ, आपकी लीला में सहायता करूँ, हाथ बटाऊँ मेरा। ऐसे बोल के तपस्या किया। हम लोग मेहनत क्यों करते हैं? जो आज हैं उससे ऊपर जाने के लिए, प्रमोशन के लिए, है ना। आज सोचते हैं भगवान आज मनुष्य को जन्म दिया है, अगले में देवता बना देना हो सके तो ब्रह्मा बना देना, टॉप मोस्ट पोजिशन, CEO ऑफ द यूनिवर्स, है ना। ऐसा हमारा हर चीज़ में क्या करते हैं, प्रगति का सोचते हैं। अभी अगर फाइनेंस मिनिस्टर हो तो अगले बार प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ लेकिन ब्रह्मा जी जो सबसे टॉप पोजिशन में, वो क्या बोल रहे हैं, टॉप पोजिशन नहीं चाहिए, तपस्या की जा रही है एकदम नीचा वाला बनने के लिए। तो वो तपस्या के बाद में भगवान प्रकट हो गए, लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं प्रकट हुए, गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए और बताया तुमने जहाँ तपस्या किया है उस जगह पर मैं इस रूप में अवतार लेने वाला हूँ, ये मेरी जन्मस्थली होगी, जहाँ पर आप बैठे हो वो क्या है, मायापुर नवद्वीप धाम, वहाँ पर एक जगह है योगपीठ जहाँ पर निमाई यानी कि गौरांग महाप्रभु बालक के रूप में जन्म लिया नीम के पेड़ के नीचे, वो स्थान पर ये बैठ के तपस्या कर रहे हैं, 5000 वर्ष पहले ही तपस्या कर रहे हैं उस जगह पर। और कृष्ण के बदले में उन्होंने गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान ने दर्शन दिया उनको और बताया कि मैं आपके भाव से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, इतना पश्चात आपका भाव आपके हृदय में है, तो अगले अवतार में जब मैं इस रूप में आऊँगा तो आप ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आओगे। एक यवन कुल में जन्म लोगे आप, अछूत कुल में, मांसाहार करने वाले कुल में, जो हमारे सनातन धर्म के कैटेगरी के अंदर बहुत नीचे आता है, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये तो शूद्र के नीचे, और यवन, फिर म्लेच्छ, फिर चांडाल, फिर आजकल के लोग कैसे यवन यानी जो मांसाहार करते हैं, जो लेकिन पिग नहीं खाते हैं, हाँ सुअर नहीं खाते हैं, म्लेच्छ यानी मांसाहार करते हैं और पिग भी खाते हैं लेकिन कुत्ता नहीं खाते हैं, उसके नीचे चांडाल, वो सब खाते हैं और कुत्ता भी खाते हैं। और अगली कैटेगरी भगवान ने बनाई नहीं, ये हमने बनाई, वो क्या, वो सांप बिच्छू मच्छर कॉकरोच सब खाते हैं, चाइना में, थाईलैंड में, हांगकांग में, आप जानते हैं ना, वो सब खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यवन कुल में जन्म लोगे लेकिन भगवान के नाम का आचार्य बनोगे, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर बनोगे, रोज 3 लाख नाम जप करोगे 22 घंटे और लोग आपके भगवान के नाम के भजन से प्रेरित होंगे। तो ये दूसरा दर्शन दिया, पहला दर्शन इमली तला में दिया, दूसरा दर्शन ब्रह्मा जी को दिया, फिर अंतर्धान हो गए और आगे फिर अवतारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें से कुछ अवतार ऐसे हैं जो सत्ययुग में हुए हैं, बड़ी अद्भुत बात है। मैं मायापुर यात्रा में गया तो मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसे ऐसे अद्भुत संदर्भ मिले मुझे, तो लगा मुझे आज के आज केवल महाप्रभु जी के अवतार के बारे में बताएंगे आपको। तो सत्ययुग में नवद्वीप में एक जगह है, उसका नाम है कोला द्वीप। कोला यानी वराह, यानी कि सुअर, भगवान ने वराह रूप लिया था ना, उसका जगह का नाम है वो। तो तब नाम नहीं था वो, लेकिन तब एक वराह भगवान का एक अद्भुत भक्त था वहाँ पर, उसने वराह भगवान की बहुत पूजा की, चंदन से, तेल से, फूल से, हाँ फूल मालाओं से, अलंकारों से, प्रार्थना करके, गीत गाते हुए, आनंद से भजन करते हुए, ऐसे बहुत ही अगरू अगरबत्ती धूप हर प्रकार के व्यंजन से उन्होंने भगवान की सेवा की पूरे जन्म भर की। बूढ़े हो गए तो बूढ़े होने के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान अभी आप मुझे दर्शन दीजिए नहीं तो जीवन समाप्त होने वाला है, प्लीज़ अपियर इन फ्रंट ऑफ मी। रोने लगे वो, रो रो के जमीन पे लोटपोट होकर, रोलिंग ऑन द ग्राउंड ही इज वर्शिपिंग द लॉर्ड, प्लीज अपियर। तो अचानक एक दिन उनके सामने वराहदेव प्रकट हो गए, बहुत विशाल शरीर उनका, एक पहाड़ पर अवतर हो गए और दर्शन देते ही ये जमीन पर लुटपोत हो गए। और भगवान ने कहा कि यह पर्वत जो है ये गोवर्धन से अभिन्न अभिन्न है, जो गोवर्धन वृंदावन में है वही वैसा ही ये पर्वत है। और कहा कि आपके भजन से और आपकी तपस्या से और पूजा से प्रसन्न हो गया हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके हृदय में प्रेम और भक्ति जागृत होगी। और अभी सत्ययुग चल रहा है, यहीं इसी जगह पर मैंने हिरण्याक्ष को मारा था, यही वो पहाड़ है जहाँ पर हमारा युद्ध हुआ था, ऐसा बताते हैं भगवान उनको। फिर कहते हैं कि कलयुग में मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाला हूँ, और अचानक वराह भगवान जो है वो गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं, को दर्शन देते हैं। फिर वो अधिक आनंद से विवर होकर बेहोश हो जाता है, फिर जगता है, फिर कहते हैं हे ब्राह्मण वासुदेव, तुम जब मैं ये अवतार लेकर आऊँगा तो तुम द्विज वाणीनाथ के रूप में आओगे, मेरी राधा रानी जो है वो गदाधर पंडित के रूप में आएगी, उसके छोटे भाई के रूप में आप आओगे और मेरी लीला में सहायता करोगे। तो वो मंदिर आज भी है चंपाहाटी में, जहाँ पर द्विज वाणीनाथ का जन्म हुआ गदाधर पंडित के छोटे भाई के रूप में, और गौर गदाधर जहाँ प्रकट हुए उस जगह के उन विग्रहों की द्विज वाणीनाथ ने बहुत सुंदर सेवा की है और भगवान की लीला में सहायता किया है। तो वो सत्ययुग की बात हुई। हाँ, अभी आपने भागवत में सुना होगा कथा, शायद पता नहीं होगा आपको, तो भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार हुए हैं, उनका नाम है पृथु महाराज। सब लोगों को पता नहीं होगा, भागवत में उसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो पृथु महाराज भगवान के शक्ति आवेश के अवतार थे। तब पृथ्वी ने राक्षसों के प्राबल्य होने की वजह से वो धन धान्य देना बंद कर दिया था। क्या होता है ना, पृथ्वी पर जब भी पाप का भार बढ़ता है तो पृथ्वी अपना जो पावर है वो गुप्त कर लेती है। जो उनकी पावर क्या है, धन धान्य देने का है ना, पेड़ पौधा खेत खेती सब हमको जो धन धान्य फल फूल प्राप्त होता है वो पृथ्वी हमको देती है जादू की तरह से। आप कुछ डालेंगे तो उसका एक पेड़ आएगा, उसमें आम आएगा, कुछ डालेंगे तो कटहर आएगा, कुछ आएगा तो पेरू आ जाएगा। इस तरह से पृथ्वी की जादू जो है ना वो शक्ति है वो, लेकिन पाप बढ़ने से वो अपनी शक्ति जो है वो छुपाने लगती है। तो एक राजा हुआ था भयंकर, उसका नाम था वेणा। तो वेणा राजा इतना पापी था, उसके वजह से पृथ्वी ने अपना सारा शक्ति छुपा लिया था। फिर वेणा को राक्षस ब्राह्मणों ने मंत्र बोलकर उसको मार दिया, ब्राह्मण बहुत पावरफुल होते हैं, और उसकी जंगा को मंथन किया और उस मंथन में से पृथु महाराज का जन्म हुआ। और पृथु महाराज फिर पृथ्वी को सीधा करने के लिए निकले तो बहुत सारा उबड़ खाबड़ पृथ्वी हो गई थी। तो पूरी पृथ्वी को फ्लैट करने का हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं ना मशागत, क्या कहते हैं, हल लेके जाते हैं पृथ्वी को ठीक करते हैं, फिर वो बीज डालते हैं, फिर उसका सिंचन करते हैं, फिर खेती होती है। तो वैसे पृथु महाराज पूरे पृथ्वी को ठीक करने के लिए निकले। पृथ्वी को प्रश्न किया कि आपने क्यों छुपा के रखा है सब धन धान्य का अपना शक्ति। तो उसने बताया कि पाप बढ़ गया था इसलिए मैंने छुपा के रखा था, अभी आप धर्मशील राजा हो तो मैं सब कुछ ठीक करूँगी, आश्वासन देती है। तो पृथु महाराज फिर अपने सैनिकों को पूरे पृथ्वी भर जमीन को ठीक करने के लिए भेज देते हैं। तो कुछ कारीगर जो है वो नवद्वीप धाम में पहुंच जाते हैं और पृथ्वी को ठीक करने का प्रयास करते ही शुरू करते ही उनको उस पृथ्वी से उस जमीन से बड़ा प्रकाश नजर आता है, एफलजेंट लाइट। तो वो कुछ अचंभित हो जाते हैं, कुछ डर जाते हैं और भाग के राजा को मिलते हैं कि राजा देखो ऐसा चमत्कार हमको दिखाई पड़ रहा है, कहीं ऐसा अनुभव नहीं हुआ, यहाँ पर काम शुरू करते ही एकदम प्रकाश दिखाई पड़ना। तो पृथु महाराज समझ गए कुछ दिव्य बात है। तो पृथु महाराज भगवान के अवतार थे ही तो वहाँ जाके बैठ गए उस जमीन पर और ध्यान किया उन्होंने, तो उनके ध्यान में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरा नवद्वीप धाम है इसलिए यहाँ से आपको प्रकाश का अनुभूति हो रही है, तो यहाँ पर आप एक सुंदर कुंड बनाओ और उस कुंड को सुशोभित करके पृथु कुंड नाम दो। तो फिर पृथु राजा ने वहाँ पर एक सुंदर कुंड बनाया है। वो कहाँ है, योगपीठ जगह जो है उसके बिल्कुल पास में है, लेकिन अभी वो लुप्त हो चुका है, हमारे नज़रों के लिए उपलब्ध नहीं है, इज़ नो अवेलेबल फॉर आवर साइट। लेकिन उस जगह पर पृथु राजा ने पृथु कुंड बनाया चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके। फिर आगे जाकर उन भगवान ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि इसका जो जल पिएगा वो सब पाप से मुक्त हो जाएगा, इसमें जो स्नान करेगा मेरे धाम को प्राप्त करेगा, ऐसा वरदान दिया। फिर आगे जाकर ये तो सत्ययुग की बात है, तो कलयुग में एक्चुअली ये स्थान वहीं पर था जब महाप्रभु ने जन्म लिया। तो एक राजा ने उसको और विस्तारित किया आज उसको कहते हैं बल्लाल दिघी, अपने पिताजी का नाम दिया उसने उसको। लेकिन आज भी वो धाम का जो महत्व है, उसका जल का स्पर्श और जल के स्नान से भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। इसी कुंड के किनारे, कौन सा कुंड बताया मैं आपको, पृथु कुंड जो मायापुर में है, उसके किनारे जयदेव गोस्वामी ने दशा अवतार स्तोत्र लिखा है। जब हम बोलते हैं ना तव कर कमल वरे नखामद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, ऐसे ये तो नरसिंह भगवान का मंत्र है, ऐसे सभी अवतारों के मंत्र है दशा अवतार के। और एक ग्यारहवां मंत्र भी है जिसमें सभी अवतारों का गुणगान गाया है कि ये मंत्र, ये इनका गुणगान करने से क्या लाभ होता है, उसका लास्ट श्लोक में वर्णन भी किया है। वो मशहूर दशावतार स्तोत्र जो है वो उस कुंड के किनारे बैठकर सातवीं सदी में जयदेव गोस्वामी ने लिखा था। तो उसके आगे जाकर एक और सुंदर द्वीप है, ये सब अंतरद्वीप की कहानी बताई मैंने। अंतर यानी नौ द्वीप के बीच में जो अंतरद्वीप है, सेंट्रल केंद्र स्थान में है, वो अंतरद्वीप है जिसमें आपको मैंने बताया पृथु कुंड उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया, उसी घर पे उसी जगह पर निमाई यानी कि गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ। अगला द्वीप जो है सीमांत द्वीप है, उसमें क्या लीला हुई, अभी समय बहुत कम है मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ। पार्वती देवी ने एक बार नारद मुनि को विष्णु का महाप्रसाद दिया, जो मना था देने के लिए लेकिन भगवान ने फिर मान लिया, नारद मुनि को महाप्रसाद दिया। विष्णु का महाप्रसाद खाते ही बड़े इंतजार के बाद नारद मुनि भाव विभोर हो गए, एकदम बेहोश से हो गए, कभी होश में है कभी बेहोश है, कभी नाच रहे कभी कूद रहे कभी कुलांटी मार रहे हैं, मालूम है ना कुलांटी समर सॉल्ट ऐसे करते 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 वो कैलाश पहुंच गए, बैकुंठ से कैलाश पहुंच गए। सोचो आप कितना आनंद हुआ रहेगा उनको। तो कैलाश में अपने शिवजी महाराज बैठे हैं, वो नारद मुनि के भाई है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र है दोनों। बोले भैया क्या होगा, पकड़ते उसको जाके, होश में आओ बताओ क्या हुआ। कहते विष्णु का प्रसाद पाया। अच्छा विष्णु का प्रसाद पाया, तो मुझे याद नहीं किया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भूल गए मुझे आप। बोले क्या करूँ, बड़ा इंतजार के बाद प्राप्त हुआ, तुरंत खा लिया मैंने, हो सकता है मेरे हाथ में बचा हो कुछ। तो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो कुछ दाने महाप्रसाद के, तुरंत शिवजी उसको ले लेते हैं और खा लेते हैं। फिर क्या होता है, तांडव नृत्य शुरू होता है, मतलब वो प्रलय काल का नृत्य नहीं कर रहे लेकिन ऐसा भयंकर नृत्य करते हैं आनंद में जाकर कि सारी पृथ्वी कांपने लगती है। सब देवता बोलते हैं अरे प्रलय का समय नहीं आया, एक तांडव नृत्य क्यों कर रहे हैं, इनको रोको रोको। सब पार्वती के पास भाग भाग के आते हैं, माता जी क्या हो रहा है प्रभु जी को इतने नाच क्यों रहे वो बिना समय के। तो उनको भी आश्चर्य होता है क्यों नाच रहे हैं, क्या हुआ। तो आती है उनको मिलने के लिए, जहां पर भयंकर नृत्य हो रहा है, एक एक चरणों में गिरते ही पृथ्वी कांप रही है, सब देवता लोग इकट्ठा हो गए भय के मारे। तो पार्वती जाके पकड़ दी उनको, स्वामी स्वामी रुको बताओ क्या हो गया, तांडव क्यों हो रहा है। पर तांडव नहीं है ये प्रेम का नृत्य है बोला ऐसा क्यों हुआ, ये देखो नारद जी ने मुझे ये महाप्रसाद दिया था। बोला अच्छा मुझे अर्धांगिनी कहते हो और मुझे नहीं दिया प्रसाद आपने, अकेले नहीं पाया, जब मैं भी कुछ प्राप्त करती हूँ तो सबको बांट के खाती हूँ, मेरा नाम अन्नपूर्णा है, मेरे पास जो भी प्राप्ति होती है मैं सब जीवों को, मेरे जितने भी जीव हैं, जेरे पुतने पुत्र हैं मेरे, सबको दे देती हूँ, और आपने मेरे बिना विष्णु का प्रसाद खा लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तपस्या करती हूँ और तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न करूँगी और उनसे ऐसा महाप्रसाद लूँगी जो पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए बटने लायक होगा, और सबको बांटूँगी उसको मैं। तो वो इस द्वीप में आई पार्वती जी, उन्होंने वहाँ तपस्या की और तपस्या के फल में अंत में गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। जैसे दर्शन दिया तो सुंदर रूप पीताम्बर धारण किया हुआ, गौर वर्ण हाथ उठाए हुए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे, प्रेम से झूम रहे हैं, उनके माला पर कितने भंवरे गूंज रहे हैं, उतना संगीत हो रहा है भंवरों का सुंदर राग में, सब सुंदर दर्शन के आनंद से भरे हुए। पार्वती तुरंत चरणों में गिर गए उनकी और चरणों की धूल मांग में भरी उन्होंने, इसलिए उसका नाम पड़ा सीमांत द्वीप, जिस द्वीप में ये लीला हुई। और क्या हुआ, उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं जानता हूँ तुमने तपस्या क्यों की थी मेरे प्रसाद के लिए, मैं तुम्हें ऐसा प्रसाद दूंगा जो प्रसाद ग्रहण करने से न केवल तुम्हारा, पूरे विश्व के जितने जीव हैं सबका कल्याण होगा, ले लो प्रसाद मेरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महाप्रसाद गौरांग महाप्रभु ने उनको दिया। तो आज भी आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सीमांत द्वीप में दर्शन मिलेगा। गौरांग महाप्रभु खड़े हैं और पार्वती जी कमल में तपस्या के लिए बैठी हुई है और गौरांग महाप्रभु आशीर्वाद के रूप में महामंत्र दे रहे हैं। कितना दर्शन हो गए? 3 हो गए, एक ब्रह्मा जी के, एक इमली तला के, एक पृथु के और ये 4, हाँ चौथे हो गए। एक और सुंदर दर्शन दिया भगवान ने, तब वो छोटे से बालक थे द्वापर में। अभी लंबी लंबी कहानी है, कोई बात नहीं, छोटे से बताते हैं आपको। राधा रानी गई अपने यशोदा के घर पे गई। यशोदा ने उनको उनकी माता से परमिशन लेके बुलाया था कि इनको दुर्वासा मुनि का वरदान मिला है कि इनके हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत से अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी खाएगा उसको रोग नहीं होगा, जो भी खाएगा वो हमेशा विजयी होगा। तो मैया ने सुना, यशोदा माई ने, हमें तो ऐसे ही करना चाहिए, जिसके हाथ का प्रसाद अमृत जैसा हो, उसको खाने से हमारे कन्हैया को रोग ना हो, हमारा कन्हैया हमेशा विजयी रहे। तो वो आई घर पे, उन्होंने कहा कि इसको भेजोगे खाना बनाने के लिए? तो वो बड़ी खुश हो गई, भेज दिया। पर रोज़ का जाना, रोज़ का आना, खाना बना के वापस आना। एक दिन लगा कि इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सद्गुण संपन्न है, इतनी सुशील है, इतनी कुलीन है, इतनी कुशल है, इतनी सर्वगुण संपन्न है, वो रोज़ का आना जाना के बदले में यहीं रख लूँ तो कितना अच्छा है। एक दिन भाव से विभोर होकर उसको गले लगाती है, अश्रु बहाती है प्रेम से, और तुरंत अपने रसोई से हल्दी लेकर हाथ को लगा देती। मतलब क्या हुआ? बहू के रूप में उसका एंगेजमेंट कर देती, वाग निश्चय। लेकिन बाद में होश आता है कि अरे मैंने तो उनकी मैया पापा को पूछा ही नहीं, अपने आप ही हल्दी लगा दिया। क्या सोचेगी मेरी सहेली जो है? ये भी बड़े खुश होकर निकले वहाँ से। जब बरसाना के क्षेत्र में प्रवेश किया तो बहुत चिंता हुई, माता क्या कहेगी, यही सिखाया था मैंने, कहीं जाकर हल्दी लगा के आना है वापस अपने आप ही बिना परमिशन के, यही मर्यादा हमारी। डर गए। सखियों ने कहा डरो मत, यहाँ पर एक सुंदर कुंड है बाबा का, उससे हाथ धो लेना, तो सारी हल्दी यहाँ पर धुल जाएगी, हम किसी से नहीं कहेंगे क्या हुआ, सब गाप धूप गुप्त रहेगी। सब लोगों ने घिस घिस कर हाथ को हल्दी से मुक्त कर दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वहाँ पर सब लोग आए, देखा तो पूरा कुंड पीला हो गया है। और ब्रजवासी बड़े चतुर होते हैं, हाँ, दे पुट वन इंटू वन एंड मेक अ नाइस स्टोरी। सबने ऐसा ही सोचा कि ऐसा ही हुआ होगा जैसे हो गया है। सीधे पहुंचे घर, अरे कीर्ति मैया, हमने सुना कि राधा रानी का वाग्निश्चय हो गया, ये बात सही है क्या? बोले कभी वाग्निश्चय हुआ? तो उसको बुलाती है, अरे क्या बात है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सब गांव वाले आगे बोलते वाग्निश्चय हो गया आपका। तो राधा रानी सर झुकाती है, कुछ बोल नहीं पाते, तो बड़ी दुखी हो जाती है। बोलते तो मैया ये बात सच है, मैंने कुछ नहीं किया, यशोदा माई ने ऐसे गले लगाया और मुझे कुछ समझ में आने के पहले हाथ में हल्दी लगा दिया। तो ये वो बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे मन में भी यही बात थी, अपने आप हो गई अच्छी बात है। एनीवे बाद में फिर बहुत गिफ्ट भेजते हैं, मोती भेजते हैं, बहुत सारा सामान भेजते हैं एज अप्रूवल कि आपने जो भी कुछ किया है। वहाँ पर वो टेंशन में रहते हैं कि हमने जो कुछ किया है अभी गाली पड़ेगी कि क्या होगा, क्योंकि ऐसा गलत काम किया है। तो जब बैलगाड़ी भर के मोती आते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद में हमारे कन्हैया जो है घूमते घूमते, उनको ना नंदगांव में मन नहीं लगता है, वो हमेशा बरसाने में आते जाते रहते हैं। हाँ, कभी पत्थर बीनते रस्ते के, बोले क्या कर रहे हो? बोले यहाँ पर अभी क्या है ना, रस्ते बहुत कंकड़ बने हुए, मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ उसको। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, आ रही क्या? नहीं आ रही। तो ऐसे आ जाते हैं। तो इस बार जब आते देखते हैं कि ये कुंड पीला कैसे हो गया, उनको पता नहीं है क्या रहस्य है। तो कुंड के अंदर घुस जाते हैं, पूछते पूछते कि ये पीला वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। तो उनकी आवाज़ गूंज रही है पूरे आसमान में, और वो उस कुंड में नीचे उतरते 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 नीचे जाते हैं। और आखिर में क्या होता है पता है? दो हाथ ऐसे पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, एक मोर पंख सरफेस के ऊपर, ऐसे ही बाकी सब पानी के नीचे। 3 चीज़ें घूम रही है पूरे तालाब में और आवाज़ गूंज रही है ये पीली वस्तु क्या है। उसके बाद में वो बाहर आ जाते हैं, तो मोर पंख दोनों हाथ के ऊपर ऐसे हाथ आते हैं और एक व्यक्ति मतलब बालक बाहर आता है, वो पूरा गौर वर्ण का है, मतलब स्वर्ण कांति हो गई उसकी, येलो गोल्डन येलो, और फिर भी पुकार रहा है ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। आप बताइए पीली वस्तु क्या है? राधा रानी का प्रेम है वो, हल्दी का स्वरूप है लेकिन राधा रानी का प्रेम है, उससे रंग गए पूरे वो। उस बार उन्होंने उस रूप में पहली बार ऐलान किया कि राधा रानी का रंग धारण करके मैंने इतना आनंद का अनुभव किया, अभी मैं इसी रूप में आऊंगा। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट। अभी गोद्रुम द्वीप नाम का एक द्वीप है, गोद्रुम जो जलांगी के नदी के परे हैं, वहाँ पर हमारे ठाकुर भक्ति विनोद का घर है। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने बहुत सुंदर कीर्तन किया था भगवान के नाम का, सुरभि कुंज में। तो वहाँ पर एक राजा थे सत्ययुग में, उनका नाम था सुवर्णसेन, और वो पापी नहीं थे लेकिन भोगी थे, यानी कि बहुत ऐश्वर्य भोगने का उनकी इच्छा थी, लिप्त रहते थे अपने ऐश्वर्य में भोगने में। तो नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा, नारद मुनि बड़े कल्याणकारी संत हैं, सब जगह जाके सबका देवताओं का सबका उद्धार करते रहते हैं। तो इसका अवस्था देखकर कि इतना सुंदर राजा है, इतना अच्छा गुण वाला है, शक्तिशाली है, बलवान है, वीर है, लेकिन बहुत भोग में लिप्त है, दिन रात भोग करने में लगा रहता है। तो उसको आकर बोध देते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है वो भोग लेने के लिए नहीं है, भगवान की भजन के लिए है। तुम इतने भाग्यवान हो कि तुम्हारा राज्य नवद्वीप धाम में है। अभी तो वो प्रकट नहीं हुए भगवान, लेकिन आगे कलयुग में आप सत्ययुग में हो, आगे कलयुग में आने वाले हैं और यहाँ पर प्रेम संकीर्तन करने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का कीर्तन और नृत्य करके विश्व को आनंद बांटने वाले हैं। ऐसे महान देश के तुम राजा हो।
यस,
हाँ। तो इसलिए आपको ये सब भोगवाद छोड़कर भगवान के भजन में आना चाहिए। जीवन नश्वर है, कुछ समय के बाद सब भोग नष्ट हो जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर क्या भोगों के फायदा है? सब कुछ यही रहेगा, तुम चले जाओगे, वृद्ध हो जाओगे, मर जाओगे। तो जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, भगवान का भजन करो। तो नारद मुनि के संग से बड़ी मति उसकी शुद्ध हो जाती है और भगवान के भजन में लगता है। उसी रात को उसके स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं, नृत्य करते हुए अपने पार्षदों के साथ में आनंद का नृत्य करते हुए दर्शन देते हैं। तो ये भाव विभोर होके गिर जाते हैं। तो उसको चैतन्य महाप्रभु वरदान देते हैं कि तुम्हारा भाव जो बदली हो गया है वो देख के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, ये मेरा दिव्य धाम है, यहाँ पर मैं आने वाला हूँ, और जब मैं सत्य त्रेता द्वापर समाप्त होने के बाद कलयुग में आऊँगा तो तुम बुद्धिमंत के नाम से अवतार लोगे। तो ये बुद्धिमंत की सेवा क्या थी? बुद्धिमंत ने जब गौरांग महाप्रभु का उस अवतार में विष्णु प्रिया के साथ विवाह हुआ, ये विष्णु प्रिया जो थी वो सीता जी का अवतार थी, प्रभु रामचंद्र ने भी नवद्वीप में प्रवेश किया है, एक द्वीप है उसका नाम है मोदद्रुम द्वीप, उसमें प्रभु रामचंद्र वनवास में आए थे और सीता को बताया था कि मैं कली में आऊँगा और प्रेम विभोर होकर सबको नाम का वितरण करूँगा, तब तुम विष्णु प्रिया बनकर आओगी और तुम्हारा मेरा कुछ समय के लिए विवाह होगा, फिर मैं संन्यास लूँगा। तो उस समय जो विवाह हुआ उनका गौरांग महाप्रभु का, तो उस विवाह का सारा स्पॉन्सरशिप बुद्धिमंत ने किया था भोजन का, डेकोरेशन का, जो भी श्रृंगार का जो भी खर्चा था वो बुद्धिमंत ने दिया था। फिर गौरांग महाप्रभु बचपन में बहुत ड्रामा करते थे, रामायण का, बाकी अवतारों का, दशावतारों का, तो वो सारे नाटिकाओं में जितने अलंकार, वस्त्र, ड्रेसेस होते ना, वो सारे ये बुद्धिमंत स्पॉन्सर करते थे। और जब संन्यास हो गया भगवान का और भगवान जगन्नाथपुरी चले गए, तो बहुत सारे बंगाल के भक्त जो है जगन्नाथपुरी जाया करते थे, तो उनका जाने आने का, रहने का, भोजन का खर्चा बुद्धिमंत दिया करते थे। तो बड़ी अच्छी सेवा की उन्होंने। ये थे कौन? राजा सुवर्णसेन सत्ययुग के, जो कलयुग में गौरांग महाप्रभु के अवतार में बुद्धिमंत बने, उनका नाम बुद्धिमंत। कितने हुए? सब लोग गिनना है ना, सोना नहीं है। हरे कृष्णा। तो उसके बाद में मध्य द्वीप नाम का एक जगह है, बहुत सुंदर, 9 द्वीप है ना, 9 द्वीप, एक हो गया अंतरद्वीप, एक हो गया सीमांत द्वीप, एक हो गया गोद्रुम द्वीप, एक हो गया मोदद्रुम द्वीप, अभी आ गए हम मध्य द्वीप में। तो ऐसे कहा है कि ब्रह्मा जी के, सब लोग हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पुत्र हैं उनके, मेन नारद मुनि, चतुष्कुमार, सप्तऋषि भी उनके पुत्र हैं। तो सप्तऋषि एक बार बैठकर केवल गौरांग महाप्रभु गुणगान करने लगे, दर्शन भी नहीं हुआ अभी तक, पता भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान था सब कुछ। तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु का दर्शन नहीं, गुणगान करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे आप कितने भाग्यवान हो, आप सब लोग नवद्वीप जाओ, मध्यद्वीप जाकर वहाँ पर आप गौरांग महाप्रभु का गुणगान करो। जैसे ही सप्तऋषि वहाँ पहुँच गए, सप्तऋषियों को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पंच तत्वों के साथ दर्शन दिया, यानी कि चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास, पांचों जन प्रकट हो गए हाथ ऊपर उठाए गाते हुए। तो सप्तऋषियों ने हरिनाम संकीर्तन का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम का दिव्य संकीर्तन का जो आनंद है उसका दर्शन किया। कितने हो गए? सात हो गए। अभी उसी द्वीप में एक जगह है, उसका नाम है समुद्रगढ़। इसके नाम का एक रेलवे का स्टेशन भी है बाय द वे, फॉर्चुनेटली। तो समुद्रगढ़ पे एक राजा था समुद्रसेन, वो द्वापर में था जब कृष्ण का अवतार हुआ था। तो तभी युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया ना, मैं सभा बनाई, जादुई सभा। दुर्योधन गिर गए ना, पानी समझ के चले तो वो जल था, गिर गया, जल समझ के चले तो पानी, वो जमीन थी, ऐसा बहुत सारा अद्भुत था वहाँ पर। उसको कहते हैं मय सभा। हाँ, मय दानव ने उसको बहुत, राक्षसों का आर्किटेक्ट था, उसने उसकी जान बची जब भगवान ने खांडव प्रस्थ को जलाया ना, तो ये वहाँ पर छुपा हुआ था, ये भी जलने लगा तो भगवान के शरण में गया। भगवान ने कहा कि ओके तुम नहीं मरोगे, तो मुझे कुछ सेवा दो मुझे। उन्होंने कहा कि हम जला कर अभी जगह खाली किया ना, उस पर महल बनाऊँ, अच्छा एक बढ़िया सभा बनाऊँ इंद्रप्रस्थ। तो उसने वो बनाया मय सभा। तो भी उसके बाद में राजसूय यज्ञ होने का प्लानिंग हुआ, क्योंकि राजसूय यज्ञ क्यों करते हैं, राजसूय यज्ञ होने के बाद में पूरे विश्व के राजा के रूप में आपको मान्यता मिलती है। तो उसके लिए चार दिशा में दिग्विजय करना पड़ता है, यू हैव टू गो इन फोर डायरेक्शंस एंड विन ऑल द डायरेक्शंस। तो एक दिशा में भीमसेन गए, और उस दिशा में भीमसेन गए उसमें ये समुद्रसेन का राज्य था। और रूल क्या होता है, आप एक घोड़ा भेजोगे, जब घोड़ा जाएगा तो आप चाहे तो घोड़े को शरणागति स्वीकार करो, सरेंडर टू हिम, और टैक्स पे करो, युद्ध के बिना ही आपका अलाइनमेंट हो गया। और नहीं देना है टैक्स आपको, तो आपको चैलेंज स्वीकार करना है और युद्ध करना है उसके साथ में। युद्ध होगा, आप युद्ध में हरेगा तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो राजसूय वाला आदमी है उसको राजसूय करने का परमिशन नहीं होगा, क्योंकि एक राजा से हार गया वो। तो यहाँ पर भीमसेन आते हैं और समुद्र सेन पर आक्रमण करते हैं। तो उसको ऐसे ही पता होता है कि ये भगवान का भक्त है, युद्ध नहीं करेगा, वैसे ही फ्रेंडशिप बना देगा। लेकिन आश्चर्य से ये चैलेंज करता है उसको, आक्रमण। वो सोचता है कि मैं ऐसा युद्ध करूँगा कि भीमसेन भी परास्त हो जाएंगे। जब वो परास्त होने को आएंगे तो भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, मैं कई साल से वेट कर रहा हूँ, तो ये अच्छा बहाना है दर्शन करने का। इसलिए वो फ्रेंडशिप का जो प्रपोजल है वो स्वीकार नहीं करता है, युद्ध करने के लिए ललकारता है उसको। और इतना भीषण युद्ध करता है वो समुद्र सेन कि भीमसेन कुछ ही मिनटों में मरने के लिए आ जाते हैं, मतलब अभी कुछ ही देर में मर जाएंगे उसका वार खाकर। तो हाथ उठाकर भगवान को पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझे बचाओ, पता नहीं क्यों मैं मृत्यु के सामने आ गया, अचानक जीतता हुआ जा रहा हूँ लेकिन अचानक मृत्यु के सामने आ गया। तो फिर वो उस समय अचानक उस युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भीमसेन को नजर नहीं आए वो, अभी अचानक बाण लेकर वार कर रहे हैं, अचानक प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे भीम को नजर आया तो उनको समझा नहीं क्या हो गया, और देखते रहे, प्रणाम करते जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण प्रकट हो गए, गाय प्रकट हो गई, कुमुद वन प्रकट हो गया, वृंदावन प्रकट हो गया, लीलाएं प्रकट हो गई, वो देख रहा है, दर्शन कर रहा है भगवान का। और अचानक क्या हो गया, श्री कृष्ण भगवान वृंदावन के चेंज हो गए और गौरांग महाप्रभु बन गए। अभी सब कुछ सीन चेंज हो गया, सब भक्त लोग प्रकट हो गए, हाथ उठाकर नाच कर रहे, भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे। तो फिर भगवान को शरणागत गए वो, और भगवान अदृश्य हो गए, भीमसेन को कुछ पता नहीं चला, लेकिन समुद्र सेन को भगवान ने दर्शन दिया। कितने हो गए? इसके बाद में एक और द्वीप है, उसका नाम है ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप। उसके अंदर एक सुंदर गांव है चंपाहटी, वो चंपकलता सखी का, चंपा का वन है। चंपकलता भगवान की बहुत प्रिय सखी है, भोजन बनाने बहुत एक्सपर्ट है। तो वो चंपाहटी में उसका जो वन वृंदावन का है वहाँ प्रकट हो गया है। तो वहाँ पर जयदेव गोस्वामी रहते थे, और जयदेव गोस्वामी की पत्नी पद्मावती उस चंपा के फूलों की मालाएं, अलंकार, कान में डालने वाले, गले में डालने वाले, सर में डालने वाले, बालों में डालने वाले, बहुत सारे अलंकार बनाकर भगवान को अर्पण करती थी। तो एक दिन चंपा की सेवा के द्वारा प्रसन्न होकर राधा कृष्ण ने उनको दर्शन दिया दोनों को। दोनों भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए और बेहोश होकर गिर गए। जब बेहोश होकर दोबारा होश में आए तो राधा कृष्ण गायब हो गए थे और वो गौरांग महाप्रभु को दर्शन मिला उनको। और गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो सातवीं सदी है, मैं तो 1486 में आने वाला हूँ, बहुत समय बाकी है, लेकिन आपके द्वारा गीत गोविंद का रचना होगी। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है भगवान के लीला के बारे में। वो गीत गोविंद आप लिखोगे और जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊँगा तो आपके बाद आऊँगा ना, मतलब अभी तो आप हो, लेकिन मैं 15वीं सदी में आऊँगा, उस समय नित्य रूप में आपके द्वारा लिखे गए गीत गोविंद का मैं आस्वादन करूँगा और आनंद लूँगा। तो उसके बाद में फिर जयदेव गोस्वामी ने उसी द्वीप में बैठकर चंपाहाटी वहाँ बैठकर गीत गोविंद की रचना की है। तो उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त किया। कितने हो गए? हरे कृष्णा। 10 तो पूरे होने चाहिए ना। तो बृहस्पति भी इस लीला में अवतार लिए। कौन बनकर? सार्वभौम भट्टाचार्य बनकर। तो ये जब गौरांग महाप्रभु बालक थे, बहुत छोटे से, उसके पहले से बुजुर्ग मतलब बड़े उम्र के थे, बड़े विद्वान थे ये, इतने विद्वान थे कि मिथिला में गए, मिथिला में वहाँ पर एक गुरु थे जो बड़े इतने विद्वान थे, वो कुछ नोट्स देते नहीं थे, उनके पास जाना है, वो सीखना है, याद रखना है, जितना याद रखा है उतना आपका आपकी पूंजी, रेस्ट ऑल फॉरगेट इट। तो ये बड़े बुद्धि वाले थे, बड़े स्मरण शक्ति वाले थे, ये वहाँ पर गए और जो जो उन्होंने पढ़ाया पूरा याद करके आके ग्रंथ लेके उसके पूरे ही ट्रांसक्राइब्ड एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैड हर्ड। और अपना विद्यापीठ खोला तो उस गांव का नाम क्या है? विद्यानगर। दुनिया भर के पंडित वहाँ पढ़ने के लिए आ जाते, इतने बड़े महान विद्वान थे। लेकिन महाप्रभु के जन्म के बाद तुरंत जगन्नाथपुरी चले गए और राजा प्रताप रुद्र के राजगुरु बने वहाँ पर, बड़े विद्वान पंडित थे ये। तो महाप्रभु संन्यास लिया, 24 साल के बाद संन्यास लिया ना, विष्णुप्रिया को छोड़कर फिर वो चले आए जगन्नाथपुरी में। जब पहली बार वहाँ पर आए तो बेहोश हो गए जगन्नाथ को देखकर, तो लोगों को लगा कि पागल व्यक्ति है, कोई नशा करके आया हुआ है। तो सिपाही भागे उनको मारने के लिए, तो ये तो बड़े विद्वान थे, उन्होंने जाकर सबको रोका, ए कोई हाथ नहीं लगाना उसको। एक रुई लिया, रुई और नाक के पास जाके देखा जीवित है कि मृत हो गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी रुई हिल रही थी, बाकी सब निश्चेष्ट शरीर था उनका। तो उन्होंने कहा इसको हाथ नहीं लगाना है, उनको उठाकर टनल से, उनका एक गुप्त मार्ग था, घर से टनल मार्ग से मंदिर तक प्रवेश था उनको, स्ट्रेट अंदर गर्भगृह में, क्योंकि बड़े राजगुरु थे ना वो, तो उसी मार्ग से उनको उठाकर वो अपने घर पे लेके आए और बहुत देर रखा। बहुत देर के बाद में गौरांग महाप्रभु होश में आए, तो उनका बहुत वार्तालाप हुआ है, बहुत संवाद हुआ है उनके बीच में। फिर गौरांग महाप्रभु, उन्होंने कहा कि आप तो बहुत यंग सन्यासी हो, इतने यंग एज में सन्यास लेना नहीं चाहिए, इतना सुंदर रूप है आपका, आप सन्यास को बना नहीं पाओगे, मतलब यू कैन नॉट बी एबल टू कीप सन्यास, आप इतने सुंदर हो, इतने जवान भी हो, मैं आपको ज्ञान दूंगा, जब मैं मेरा ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप विरक्त हो जाओगे, तब शायद सन्यास को आप निभा सकोगे। ऐसा करके 7 दिन उनको शिक्षा दिया उन्होंने, 7 डेज ही टॉट ऑल वैदिक साइंस टू हिम। और गौरांग महाप्रभु जो है ऐसे ही वैसे शून्य में देख रहे हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे कि आप मेरी कथा सुन रहे हो, आपके चेहरे में कोई विकार, निर्विकार चेहरा है, मतलब आपकी कथा, मेरी कथा अच्छी लगी कि अच्छी नहीं लगी, कि समझ में आई कि नहीं आई, कि गुस्सा आ रहा है, कि बोर हो रहा है, कि नींद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चेहरा एकदम ब्लैंक है, वैसे एकदम ब्लैंक चेहरा। 7 दिन तक कोई पढ़ा रहा है आपको, इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहा है पुराणों के, और चेहरे पे एक लकीर भी हिली नहीं उनके। तो एंड में बोले, अरे 7 दिन मैंने इतना समझाया आपको, कुछ समझ में आया क्या आपको? तभी वहाँ पर उन्होंने मुँह खोला, उन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे हो ना, ये हमारे वेद जो है ना, वेद ये सूरज के प्रकाश की तरह है, इसमें इतना साफ सब नजर आता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है ना वो बादलों की तरह है, वो सूरज की रोशनी को ढक रहा है और कन्फ्यूज़ किया जा रहा है हमको। तो आज बोला, अच्छा मुझे आज तक किसी ने ऐसा बताया नहीं इसने किसकी हिम्मत नहीं बताने की कि तुम्हारा जो नॉलेज है वो साफ साफ नॉलेज के सामने बादलों की तरह है कन्फ्यूज करने वाला। बोला अच्छा तो आप बताओ, आपको कुछ और ज़्यादा मालूम है। तो फिर भगवान ने उनको शुद्ध ज्ञान दिया और वो जब ज्ञान उन्होंने सुना तो उसका अपना ज्ञान का अहंकार पूर्ण नष्ट हो गया, पूर्णता नष्ट हो गया, एकदम चरणों में गिर गए। वो पहले मायावाद थे, निर्विकारवादी थे, अभी व्यक्तिवादी भगवान के भक्त बन गए हो, आंखों से आश्रु भय उनके और महाप्रभु के चरणों में गिरे। बोले कि आप ऐसे ज्ञान बोलने वाला व्यक्ति केवल भगवान ही हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे पास इतना ज्ञान है कि देवताओं में केवल भगवान ही मेरे से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इतना उनको पता था। तो जब वो सुना उन्होंने सब कुछ बातें तो समझ में आया उनको कि ये भगवान ही हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप परम भगवान हो, चरणों में गिर गए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो बृहस्पति के अवतार थे, उनको भगवान ने एक अद्भुत दर्शन दिया, छह भुजा वाला, दो भुजा हरे रंग की थी, धनुष बाण लिए हुए, किसकी थी वो, राम की, दो भुजा मुरलीधर पकड़ की थी, किसकी थी वो, कृष्ण की, ब्लू रंग की थी, और दो भुजा गौर वर्ण की थी, स्वर्ण कांति वाली, उसमें एक में कमंडलू और एक दंडा था उसके अंदर संन्यास का। मतलब क्या, एक जन्म में राम, एक जन्म में कृष्ण, इस जन्म में गौरांग महाप्रभु। तो वो दर्शन दिया उनको, फिर सार्वभौम जी वो बेहोश हो गए उस दर्शन को देखकर और महाप्रभु के भक्त बने। इतने प्रकांड पंडित थे वो, महाप्रभु ने उनको प्रेमी भक्त बना दिया। प्रकांड पंडित कैसे होते हैं, निर्विकार, ना उनको गुस्सा आता है, ना उनको प्रेम आता है, हर समय शांत रहते हैं। भक्त कैसे रहता है, आनंदी रहता है, हाँ हर प्रकार के भावनाओं को व्यक्त करता है। तो ये प्रकांड पंडित जो थे, विद्वान, निर्विकार, वे एकदम बालक जैसे बन गए। और एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे थे तो बच्चों जैसे पानी मार कर खेल खेलने लगे। तो महाप्रभु ने कहा, देखो देखो देखो, इतने बड़े प्रकांड पंडित, राजा के राजगुरु, बालक बनकर जल में खेल रहे हैं, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि षडभुजा का दर्शन उन्होंने किया था। इस प्रकार से और बहुत सारे अवतार हैं उनके, लेकिन महाप्रभु जी के सुंदर अवतार ये कई युगों के पहले से हो रहे हैं। उनके अवतार होने के पहले ही कई लोगों को दिखा चुके हैं। तब सबों का भाग्य है ये कि जो भाग्य हमें इतर सारे युगों में नहीं मुमकिन है, वो भाग्य हमें इस युग में केवल भगवान का नाम लेकर मुमकिन है। संत लोग कलयुग को देखते हैं कि बहुत सारा दोष है इसके अंदर, दोषों का सागर है ये, फिर भी वो संत लोग कलयुग की पूजा करते हैं। कलेर दोषेर निधिर राजन अस्थि एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इतना सारा दोष होने पर भी कलयुग में एक महान गुण है इसके अंदर, वो है कृष्ण के नाम का कीर्तन। और जो व्यक्ति कलयुग में कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, मुक्त संग परम ब्रजेत, मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करता है। और वो जो मार्ग है भगवान के धाम में प्रवेश करने का, वो कृष्ण भगवान ने गौरांग महाप्रभु में रूप में आकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन देकर हमको सबको दिया है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत है, ना परिवार छोड़ने की ज़रूरत है, ना धन त्यागने की ज़रूरत है, ना जंगल में जाने की ज़रूरत है, ना संन्यास लेने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हो वो कर सकते हो, परिवार में रह सकते हो, धन दौलत रख सकते हो, लेकिन भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम को स्वीकार करो, भगवान को अपना बना लो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, सब कुछ करते हुए अपने कर्तव्य को निभाओ, पापों को छोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो। इतना सा करने से तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत दान करने की भी ज़रूरत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उसी से द्वारा सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन करेंगे तो इसी जन्म में, अनेक जन्मों में नहीं, इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको अधिक मास की, सिंहस्थ पर्व की, कुंभ मेला की, रथ यात्रा की, आषाढ़ एकादशी की, सभी उत्सवों के लिए बधाई हो। और यही शुभकामना आपके लिए प्रार्थना कि आप सब लोग इन सभी उत्सवों का लाभ लेकर भगवान के नाम से प्रेम उत्पन्न करो, भगवान के नाम से आसक्ति उत्पन्न करो, तो ये आपके जीवन में सब कुछ क्लेश नष्ट हो जाएंगे, आनंद आएगा और जीवन के अंत में आप भगवान को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।